ही पर्याप्त नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए, परंतु आद्यम शरीरम खलु धर्म साधनम, सबसे पहला साधन है मनुष्य शरीर। तो इसको पाकर भगवान कहते हैं मत धर्मे आस्थित, जो व्यक्ति मेरे धर्म में, भागवत धर्म में, अर्थात मुझे प्रसन्न करने वाले कर्मों में, श्रवणम कीर्तनम आदि में सम्यक स्थित होता है, वह माम उपायति, मुझे प्राप्त कर लेता। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवत धर्म का अनुष्ठान आवश्यक, जैसे श्रीमद् भागवतम का श्रवण। श्रीमद् भागवतम का श्रवण प्रथम भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भगवान के प्राप्ति का यह स्वरूप है कि पहले हम भगवान के विषय में जाने, और भगवान के विषय में जाना जा सकता है सुनकर। मध्यर में आ स्थित, आ का अर्थ है सम्यक, पूर्ण रूप से स्थित का अर्थ है सिचुएटेड, टिका हुआ। भक्ति योग में जो अच्छी तरह से टिकता है वो मुझे प्राप्त करता है। तो माम शब्द विशेष्य है, और इसके बहुत से विशेषण भगवान इसमें दे रहे हैं। आनंदम परमात्मानम आत्मस्थम, भगवान कैसे हैं तो ये बताते हैं, मैं आनंद हूं। आनंदम, माम का विशेषण है आनंदम। भगवान में नख से सिख तक केवल आनंद ही आनंद है। इस संसार में हम लोग ऐसी कोई वस्तु नहीं देखते हैं जो आनंद हो, उसके संस्पर्श से या देखने से, सुनने से, खाने से मन में एक अनुकूल वृत्ति का उदय होता है, उसी को व्यक्ति आनंद मान लेता है, सुख मान लेता है। लेकिन वह वस्तु स्वयं आनंद स्वरूप नहीं होता है, उसी वस्तु से दूसरा कोई व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। कहा जाता है कि संसार में एक वस्तु किसी के लिए विष है तो दूसरे के लिए अमृत है, दूसरे के लिए अमृत है तो किसी के लिए विष। इसी संसार में देखिए, जैसे मान लीजिए कोई गुलाब जामुन खा रहा है व्यक्ति, बहुत अच्छा, तो उसके मन में एक सुख की वृत्ति उदय होती है, मैं सुखी हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उसी गुलाब जामुन को गिद्ध पूछेगा नहीं, पूरा नया नया गुलाब जामुन बना करके रख दिया जाए, एक भी गिद्ध खाने के लिए नहीं आएगा। इसका अर्थ है कि उस वस्तु में आनंद नहीं, तो किसी की अनुकूल वृत्ति हुई इसलिए आनंद है, या प्रतिकूल वृत्ति हुई इसलिए आनंद है। लेकिन भगवान का स्वरूप ऐसा है कि वो स्वयं आनंद है। प्रतिकूल वृत्ति वाले भी भगवान को देखकर आनंदित होते हैं। रामचरितमानस में एक घटना दी गई है कि जब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक कान काट दिया, तो वह हाहाकार करती हुई गई खर, दूषण और त्रिश्रा के पास। तो ये लोग 14,000 राक्षसों की सेना लेकर लड़ने के लिए आए। तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता को थोड़े आड़ में कर दो, और मैं कुछ कौतुक करना चाहता हूँ, इन राक्षसों के साथ युद्ध करूंगा। तो वे तीनों 14,000 राक्षसों की सेना लेकर आए, आ करके जब भगवान राम को देखे तो उनका क्रोध शांत हो गया। पहले तो सब आ रहे थे कि मारेंगे, काटेंगे, गरम गरम खून पिएंगे, राक्षस आ रहे थे बहुत क्रोध में कि शूर्पणखा का, हमारी बहन का नाक कान काटा है, ये किया वो किया, बहुत क्रोध हो रहा था। और हथियार बिल्कुल ताने हुए, उठाए हुए सब आए थे कि जाते जाते मारेंगे, तीनों को खत्म कर देंगे। तो वहां गए तो देखे कि दो नहीं है, सीता जी और लक्ष्मण जी वहां नहीं। तो भगवान को देखा उन लोगों ने, तो वे तीनों सेनापति अनाउंस करने लगे, रुको रुको, मारो मत, मारो मत, रुको रुको रुको, मारो मत। तो सब चकित हो गए, क्या हो गया क्या हो गया। वे लोग भी ध्यान दिए तो वास्तव में जो ध्यान दिए देखे राम को तो सब हथियार नीचे कर लिए, नहीं नहीं नहीं, और अनाउंस जोर से किए कि यद्यपि भगनी किन्ह कुरु का बदला एक नहीं पुरुष अनुप, भले हमारे बहन का नाक कान काट लिया लेकिन यह लड़का वध के योग नहीं, वध नहीं करना चाहिए, क्या करोगे? अब तो मीटिंग होगी ही, इष्ट गोष्ठी हुई होगी उन लोगों में कि अब क्या किया जाए। प्रस्ताव पास किया इसने कि वध लायक लड़का नहीं है, इसको अरेस्ट करके ले चलो राजधानी में, रोज देखेंगे। और इसने जो गलत काम किया है, अपराध किया है, उसके लिए दंड ये है कि अपनी पत्नी को हमें हाजिर करें, जहां छिपा करके रखा है अपनी पत्नी दे दे और बाकी इन दोनों भाइयों को पकड़ करके ले चलो, वही रोज देखेंगे, भोजन देते रहेंगे, लोग जिएंगे, चाहे खूब अच्छा से खिलाएंगे और देखेंगे, बस यही काम रहे। तो उतने क्रोध में थे, आक्रोश में थे, लेकिन भगवान को देखते ही विचार बदल गए। तो उन लोगों ने कहा देखो तुमने ऐसा अपराध किया है कि प्राण दंड ही उचित दंड है तुम्हारे लिए, तथापि हम तुम्हें क्षमा करते हैं, तुम जहां अपनी पत्नी को छिपाए हो उसको सीधे लाओ और हम तुमको छोड़ रहे हैं जीवित। तो भगवान ने सोचा कि ये तो हमसे प्रेम करने लगे, तो सोचे कैसे लोग क्रोधित होंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे जैसे कुत्तों को हम लोग रोज खोजते चलते हैं। बहुत भगवान ने टेढ़ी भाषा में बात किया, तब तो लोग कह रही ये मारने ही लायक, बहुत बदमाश, सुंदर भर है लेकिन है बहुत बदमाश, टेढ़ा है, बताओ इतना बड़ा काम किया, हम लोग प्राण दान दे रहे हैं और फिर भी ऊपर से वचन बाण मार रहे। तो लोग सब कहे मारो 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 मारो, लेकिन भगवान ने ऐसी माया रची कि वे परस्पर में सारे असुर एक दूसरे को राम के रूप में देखने लगे। वो देखता था कि यह राम है, वो देखता था ये राम है, आपस में ही लड़कर मर गए। भगवान को बाण चलाना नहीं पड़ा, 14,000 सेना क्षण भर में मर गए। तो मेरे वक्तव्य का सारांश यह है कि भगवान को देख करके क्रूर से क्रूर जीव अपना स्वभाव छोड़ देते हैं। भगवान श्री राम पथ में चलते थे तो उनके चरण कमल को देखकर या उनके सुंदर रूप को देख करके सांप और बिच्छी भी डसना छोड़ देते थे, ये प्रभाव पड़ता है। तो वास्तव में भगवान आनंदमय है, पहला विशेषण दे रहे आनंदम। यदि कोई पूछे कि भगवान के शरीर में क्या है तो उत्तर यह है कि भगवान में केवल आनंद है, वही आनंद है नक्श सिख तक। वो देखने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये आंख है, ये नख है, ये हाथ है, केश है, लेकिन सब चीज एक वस्तु है, सारी इंद्रियां एक ही समान है। अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कल्यन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमाद पुरुषम तमहं भजामि। तो भगवान आनंद घन है और वह आनंद कैसा है तो नित्य है और चिन्मय है, सच्चिदानंद इसको कहते हैं। भगवान जब प्रवचन कर रहे हैं उद्धव जी से तो अपने विषय में बताते हैं मैं आनंद हूँ और प्रत्येक जीव सुख की अभिलाषा कर रहा है, आनंद चाह रहा है, कोई कुछ भी कार्य करे, कुछ भी साधन करे, सभी आनंद चाहते हैं। तो मैं आनंद हूँ और परमात्मा हूँ, परम आत्मा। यहाँ आत्मा का, परम आत्मा का अर्थ हुआ चिद घन, चिन्मय बिल्कुल। मैं परमात्मा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, चिन्मय हूँ, परम आत्मा। हम लोग आत्मा कहे जाते हैं क्योंकि हमारी उपस्थिति के कारण शरीर में चेतना का संचार होता है, जिससे चेतना का विकिरण हो, जो चिद वस्तु है उसको आत्मा कहते हैं। भगवान परम आत्मा है, चेतनस चेतना नाम, समस्त चेतनाओं के में भी चेतना देने वाले, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, इसीलिए उनमें परम शब्द लगाया जाता है। ऐसे भगवान के लिए आत्मा कहना यही पर्याप्त है, परंतु अन्य आत्माओं से उनका पार्थक्य सिद्ध करने के लिए परम शब्द लगाया जाता है, ईश्वर शब्द है। तो ईश्वर का भी अर्थ कृष्ण है, लेकिन फिर भी अन्य बहुत से स्वामी हैं, खंडेश्वर, खंड स्वामी, तो उनसे पार्थक्य करने के लिए परम शब्द लगाए थे, परम ईश्वर, परमेश्वर। उसी तरह परम आत्मा, अच्छा ठीक है। इस पर एक प्रश्न किया जा सकता है कि अरे आप तो अप्राकृत वैकुंठ में रहते हैं, तो आपको कोई कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे अनुभव करेगा? तो भगवान कहते हैं आत्मस्थम आत्मनि एव स्थितम, मैं सबके मन में हृदय में ही रह रहा, आत्मस्थम आत्मा में, आत्मा का अर्थ देह में या मन में ही मैं रह रहा हूं सबके। यह भगवान की सर्व सुलभता है, सबसे महान, अप्राकृत है सब प्रकार से, परंतु फिर भी वे कृपा करके सभी जीवों के साथ रहते हैं। असप्रभु हृदय अक्षत अविकारी, और भगवान किसी जीव के हृदय में है तो जीव के प्रयास से नहीं, जीव कोई मंत्र पढ़ करके उनके हृदय में नहीं रखा हुआ है, वे अपने विधान से ही सबके हृदय में हैं, आत्मस्थम। तो भगवान श्री कृष्ण अपने विषय में यहाँ तीन विशेषण दे रहे हैं। संस्कृत में एक शब्द है विशेष्य और एक है विशेषण। तो विशेषण का अर्थ होता है किसी वस्तु के गुण बताना, और जो जो वस्तु विधेय होती है उसको विशेष्य कहते हैं, उसी को बताने के लिए विशेषण दिए जाते हैं। तो माम शब्द कहकर भगवान अपनी ओर दिखा रहे हैं कि मुझे वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है जो भक्ति करता है, और मैं कैसा हूं, तो मैं आनंद हूं, परमात्मा हूं और आत्मस्थ हूं। और इसके बाद भगवान कहता है न चैवम भूतस्य विषय संगो नामास्तित्याह गुणमये, और ऐसा व्यक्ति जिसे मेरा अनुभव होने लगा, मेरी प्राप्ति कर लिया, तो वह इस शरीर में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। इस बात को इस श्लोक में कह रहे हैं, गुणमय्या जीवजन्या विमुक्तो ज्ञान निष्ठया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुतः वर्तमानोऽपि न पुमान युज्यते वस्तुभिर्गुणैः। ज्ञान निष्ठया गुणमय्या जीवजन्या विमुक्तः माया मात्रेषु अवस्तुषु दृश्यमानेषु गुणेषु वर्तमानः अपि पुमान अवस्तुभिर्गुणैः न युज्यते। ज्ञान निष्ठया, ज्ञान निष्ठा से मेरा भक्त गुणमयी जीव योनि से मुक्त हो जाता है। तो ज्ञान निष्ठा का क्या अर्थ है? ज्ञान का यहाँ अर्थ है भगवद अनुभव, भगवान के दिव्य रूप है और उनकी लीलाएं यदि मन में सदा स्फुरित होती हैं और भगवान का सदा अनुभव होता रहता है, ठीक, तो इसको ज्ञान कहते हैं। कई स्थान से श्रीमद् भागवत से यही अर्थ स्पष्ट होता है ज्ञान, और उस ज्ञान में भगवत अनुभव में जो नितराम स्थिति है उसको निष्ठा कहते हैं। नी का अर्थ नितराम, स्थ का अर्थ टिक जाना, ठहरना, निष्ठा, जहां से विचलित न हो, न मन विचलित हो, न नेत्र विचलित हो, न कान विचलित हो और न बुद्धि विचलित हो। मय व मनाधस्व मय बुद्धि निवेश है, जिस व्यक्ति के हृदय से भगवान कभी नहीं जाते हैं, उनका रूप गुण लीला आदि सब हृदय में अंकित रहते हैं, तो उस व्यक्ति को कहते हैं ज्ञान निष्ठ। जब भगवत अनुभव अखंड मिलता रहता है, इस कारण से वह व्यक्ति जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव का अर्थ है कर्म कोष, उपाधि या लिंग शरीर, कई संस्कृत में शब्द हैं। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह में तो कई स्तर के लोग आते हैं, इसलिए कोई खास पारिभाषिक शब्द यदि बोला जाए तो उसका अर्थ नहीं जानते, कोई कोई जानते हैं कोई कोई नहीं जानते। जीव योनि, जीव का अर्थ ही है कर्म बंधन में पड़ा हुआ आत्मा, और योनि का अर्थ है कारण। उपाधि या लिंग कहते हैं, लिंग शरीर, कारण शरीर। तो जब जीव भगवत अनुभव करने लगता है, भगवान कृष्ण के रूप गुण आदि के अनुभव में डूब जाता है, तो अपने आप कर्म उसके समाप्त हो जाते हैं। कर्माणि निर्दहत किंतु च भक्ति भाजन, कर्म बंधन उसकी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। इन कर्म बंधनों की विशेषता बताते हुए भगवान कहते हैं गुणमयी, ये गुणमयी है, प्राकृत है, प्रकृति के सत्व रज और तम गुणों से बने हुए कर्म बंधन है, वासनाएं हैं, उपाधियां हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। तो उससे जीव विमुक्त हो जाता है, विशेष मुक्त हो जाता है ज्ञान निष्ठा से। और माया मात्रेषु गुणेषु वर्तमान अपि पुमान न युज्यते केन अवस्तुभिर् गुणेन। तो जब भगवान के रूप गुण लीला आदि का अनुभव निरंतर बना रहता है, होने लगता है, तब जीव संसारिक वस्तुओं में, देह आदि में नहीं बनता है, आसक्त नहीं होता है। क्यों नहीं आसक्त होता है? अब वस्तु भी गुण ही, वास्तव में संसार में ये जो प्राकृतिक पदार्थ दिख रहे हैं, तो जिस रूप में दिख रहा है उस रूप में है नहीं, न सुखमय है न नित्य है। और जीव ये भ्रम करता है कि ये सुखमय है नित्य है, इसीलिए बनता है। तो वास्तव में इन वस्तुओं को अवस्तु कहा गया है, अवस्तु भी गुण है। गुण का अर्थ प्राकृत चीज है, ये अवस्तु है, वास्तविक नहीं है, सुखमय नहीं है, नित्य नहीं है। परंतु एक प्रश्न होता है कि ये वह भक्त कैसे इनसे मुक्त हो सकता है? तो भगवान कहते हैं कि अपने अनुभव से दो प्रकार का अनुभव, एक तो ज्ञान निष्ठा और दूसरी बात है कि अवस्तुतः दृश्य मानेश। अवस्तुतः दृश्य माने सुकार्थ है कि वास्तविकता ये है कि ये दिखते हैं लेकिन है नहीं। वस्तुतः दृश्य माने से, अवस्तुतः दृश्य माने से, यदि थोड़ा भी विवेक होगा किसी व्यक्ति में तो जरूर अनुभव करेगा कि ये वस्तुएं हैं नहीं, सपना की तरह व्यर्थ। तो एक तरफ मेरा अनुभव और दूसरे तरफ जगत की निसारता का अनुभव, इस कारण से संसार में और देह में रहते हुए भी वह भक्त आसक्त नहीं होता है, बनता नहीं है। तथापि संगो दुर्निवार, तथापि संगम वर्जेद इत्याह संगमिति। परंतु भगवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, यद्यपि कोई भक्त मुक्त हो गया है कर्मबंधन से, तथापि उसे चाहिए कि वह संग न करे। किसका? शिष्णो दर त्रिपाम क्वचित, संगम न कुर्यात् असताम शिष्णो दर त्रिपाम क्वचित, तस्यानुगस्तम अश्यंधे पतत्यंधानुगंधवत्। फिर भी भक्त को चाहिए कि वह शिष्णोदर त्रिपाम असताम क्वचित संगम न कुर्यात्। कदाचित किसी भी काल में या किसी भी स्थान में भूल करके भी उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो लोग केवल पेट भरने पर और जननेन्द्रिय की तृप्ति में लगे हुए हैं, वो शिष्णोदर तृप्त कहते हैं। यही दो कार्य संसार में सबको आकृष्ट किया है। एक तो खाओ खाओ खाओ, बस खाना जान, और स्त्री संग, संगम न कुर्यात अस्तम शिष्णोदर तृपाम क्वचित। असत लोगों का, दूषित लोगों का संग नहीं करना चाहिए। मुक्त व्यक्ति है उसके लिए भी कहा जा रहा है, संगम न कुर्यात असतम अस्तम लक्षणम। असत कौन है, क्या लक्षण है असत का, बता रहे हैं शिष्णोदर तृपाम। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो व्यक्ति शिष्ण को तृप्त करने के चक्कर में रहता है और जो केवल खाना जानता है, जीभ और पेट के फेर में रहता है, वो कभी कृष्ण को नहीं पा सकता। वो भले प्रसाद खा रहा, उसको शिष्णोदर तृप्त में, पहले उदर तृप्त पर विचार कीजिए, खाए खा खा करके सोना, जग करके फिर खाना, खा कर फिर सोना, यही लगा हुआ है, तो उदर तृप कर। भोजन किया जाता है भोजन करने के लिए नहीं, शरीर चलाने के लिए। जैसे मैं कई बार कहा हूं कि मोटर गाड़ियां हैं तो उसका ड्राइवर या मालिक सोचता है कि कम पेट्रोल खाता और अधिक माइलेज देता तो बहुत अच्छा होता, सभी चाहते हैं। परंतु हम लोगों की ये दशा है कि खूब ओवर ईटिंग करें और माइलेज एकदम ना दें। खूब खाए तो खूब भजन करना चाहिए ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये भगवान के उद्गार हैं, बड़े स्नेह से अपने परम प्रिय मित्र उद्धव जी को कह रहे हैं, संसार के हित के लिए उपदेश कर रहे हैं। संगम न कुर्यात असताम शिष्णोदर तृपाम कुछ। यह प्रश्न होता है अरे कभी कभी तो संग हो ही जाएगा, आदमी कहाँ जा सकता है, तो भगवान कहते हैं नहीं, क्वचित कदाचित अपि संगम न कुर्यात, कभी संग न करे। तो विपक्षे दोषम आह, फिर संग करेगा तो क्या हो जाएगा। भगवान कहते तस्यानुगस तमस्यंधे पतत्यंधानुगंधवत, जैसे अंधे के पीछे उसका बांह हाथ पकड़ करके चलने वाला अंधा गड्ढा में गिरता है, खाई में गिरता है, उसी तरह से शिष्णोदर परायण का संग करने वाला व्यक्ति निश्चित पतती गिर जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधा है, उसको दिखाई नहीं पड़ता, और अंधे का हाथ पकड़ लिया, वो कहे कि थोड़ा दूर तो चलें, थोड़ा दूर तो चलें, और पकड़ते ही बस दो कदम पर ही कई मीटर गड्ढे में मान लीजिए गिर जाए, उसे अच्छा था कि नहीं पकड़े। तो उनको अंधा कहा गया, जो लोग जननेन्द्रिय और जिह्वा की तृप्ति में लगे हुए हैं वे अंधे हैं, विवेकहीन है। तस्य अनुग्रह तमस्या, तस्य अनुग्रह पर श्रीकाश श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि आस्ताम तावत बहुनाम संगम किंतु तस्य एकस्य अपि अनुगो अनुवर्ती अंधम अनुगच्छति यंधस तद्वत। एक वचन में कहा गया है बहुत से असतों का, शिष्णोदर परायणों का संग करने पर पतन तो निश्चित है ही, एक का भी संग करने पर अंधे तमसी पतती अंधानुगंधवत, एक एक भी असत का संग करने पर गिर जाएगा, और एक मिनट संग करने पर भी गिर सकता है। तो जो भक्त के लिए बहुत खतरनाक बात है, भगवान उस बात की तरफ संकेत कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, उपादेय शिक्षा है, इसलिए भगवान इसे बोल रहे हैं। उधर मना करना चाहिए, उधर कोई बात न करो। संगम न कुर्यात् असतां सुष्णुदर त्रिपां क्वचित्। इन्हीं बातों का अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है चैतन्य चरितामृत में। असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। और फिर कहते हैं स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आदि। स्त्री की आसक्ति में पड़ा हुआ यह एक कोटि का असाधु, स्त्री संगी एक असाधु और कृष्णा भक्त आर, कृष्ण का अभक्त वो असाधु। भगवान ने यहां पर बहुत ही स्पष्ट भाषा में बोल रहे हैं शिष्णोदर त्रिपान संग नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक जो खाने के फेर में रहता है ऐसे दूषित आदमी का भी संग नहीं करना चाहिए। हमेशा जब देखो तब खाओ 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 और स्त्री की वार्ता करने वाला, ये तो अंधानुग अंधवत पतति से अंधवत पतति तथा अंधानुग भी अंधवत पतति अंधवत अंधानुग पतति अंधानुग आंख वाले के पीछे चलना चाहिए, अंधे के पीछे नहीं। बहुत सुंदर शब्द हम लोगों के संप्रदाय में है रूपानुग, रूप गोस्वामी के पीछे चलने वाले हम लोग हैं रूपानुग, और बाकी सब अंधानुग अंधों के पीछे चलने वाले। तो गिरते इस विषय में भगवान एक दृष्टांत दे रहे हैं। आप थोड़ा विचार कीजिए कि भगवान का अनुभव कितना परफेक्ट होगा, कितना उचित हो सकता है। थोड़ा सा संग करने के कारण विषय संग और महाराज पुरुरवा जैसा व्यक्ति गिर गया, इसको वे सिखा रहे हैं। और जब संग छोड़ा तब फिर मेरी प्राप्ति किया, इस विषय में भगवान इतिहास सुना रहे हैं। ऐलह सम्राडिमाम गाथाम अगायत बृहत् शवः उर्वशी बिरहान मुह्यन निर्वीण शोक संयमे। इमाम गाथाम, मैं जो यह बात कह रहा हूं उद्धव, इस विषय में महाराज पुरुरवा एक गाथा गाए हैं। अपने जीवन का अनुभव उन्होंने व्यक्त किया था, बारंबार सब जगह व्यक्त करते रहते थे और वह परंपरा से भगवान के कानों में बात पड़ी है। भगवान नर लीला के आवेश में बोल रहे हैं। तो महाराज पुरुरवा ने इमाम गाथा यह गाथा गाया था। इमाम गाथा का अर्थ है कि यह बहुत प्रसिद्ध गाथा है। उस समय के समाज में महाराज पुरुरवा की इस उक्ति की चर्चा बार बार होती रहती है, इसलिए भगवान इमाम गाथा कहते यह गाथा। कुछ लोगों के अनुभव इस संसार में विस्तृत हैं, जैसे महाराज जजाति की कहानी को भी गाथा कहा गया है, इमाम गाथा। अपनी पत्नी देवयानी जी से वे जो कुछ कहे हैं उसे भी बहुत ही सुंदर गाथा के रूप में। गाथा का अर्थ है जिसको बारंबार कहा गया हो, उसको गाथा का। ऐसे गाथा का अर्थ है कहानी कुछ बात, परंतु गाथा उस कहानी को इसलिए कहते हैं कि बारंबार आवृत्ति हुई है, सर्वत्र जिसकी चर्चा होती है उसको गाथा कहते हैं। और इमाम गाथा, इमाम गाथा, इमाम का अर्थ है यह सुप्रसिद्ध, अथवा वक्षमाणा मैं जिसे बोलने जा रहा। सम्राट का अर्थ चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का अर्थ होता है जिसके अधीन भूमंडल के समस्त राजा रहते हैं। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज अहिल ने यह गाथा गाया था। महाराज पुरुरवा के विषय में भगवान विशेषण दे रहे हैं, बृहत श्रवा, बृहत विपुलम श्रवा यशो यस्य सः, विपुल यश। भगवान के शब्दों में महाराज अहिल की प्रशंसा हो रही है, उनका बहुत बड़ा यश। किस बात के लिए यश? जानते हैं यश सबसे बड़ा जीव का क्या है? जीव का सबसे बड़ा यश है भगवान की भक्ति करना। तो भगवान उस तरफ संकेत कर रहे हैं कि वे मेरे बड़े भक्त थे और इसके साथ ही साथ परम वीर थे, संयम में रहते थे, शील स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर थे, अनेक गुण उनमें थे, और ये सब उनके गुण की गाथाएं कहानियां पूरे ब्रह्मांड में फैली थी। इसको कहते हैं बृहत श्रवा, विपुल यश, विपुल कीर्ति। संस्कृत में भी पुल का अर्थ होता है बांध, अंग्रेजी में भी शायद होता है क्या, और विपुल का अर्थ है जिस पर पुल नहीं बांधा जा सकता, जिसकी सीमा निश्चित करना कठिन, विपुल। तो सर्वत्र गाथा फैली थी, जैसा हम लोग पहले सुन चुके हैं कि इंद्र के भवन में देवताओं के समाज में महाराज पुरुरवा का यश गाया जा रहा था, और यश गान करने वाले देवर्षि नारद जी थे, इसी से समझ सकते हैं। तो भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं बृहद सभा, बहुत यशस्वी, सब तरफ से महान महाराज अहिल ने यह गाथा गाया था। कब गाया था? पहले तो उर्वशी के विरह में वे शोक में डूब गए थे, उसको भगवान बता रहे हैं, और बाद में निर्वीण, उन्हें निर्वेद प्राप्त हुआ, वैराग्य प्राप्त हुआ, शोक शांत हुआ, तो उस समय उन्होंने गाया था। तो दोनों बातों को एक श्लोक में कह रहे हैं, उर्वशी बिरहान मुह्यन निर्वीण शोक संयम है। पहले तो वे उर्वशी के विरह में मोहित हो गए थे। यहाँ मोह का अर्थ है किंग कर्तव्य विमूढ़ तो नहीं बने थे, यहाँ मोह का अर्थ है उर्वशी में ही सुख बुद्धि, भोग्यता बुद्धि। उर्वशी ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख है, आनंद है, उसी के साथ मेरा जीवन सफल है, यह जो उनकी भावना हो गई थी, इसको मोह कहा गया, मुह्यन। और मुह्यन का एक अर्थ है मूर्छित हो जाना, विकल हो जाना, मोह का अर्थ मूर्छा भी है। तो उर्वशी के विरह में वे व्याकुल हो गए थे, मूर्छित प्राय रहते थे, परंतु शोक संयमे निर्वीण अथवा निर्वीण शोक संयमे। बाद में उर्वशी लोक में बहुत काल तक रहने के बाद, बहुत वर्षों तक विषय भोग करने के बाद, उन्हें निर्वेद प्राप्त हुआ, वैराग्य प्राप्त हुआ, तो वैराग्य प्राप्त होने पर उनका शोक संयम में हो गया, शांत हो गया था। जब शोक शांत हो गया, उस समय महाराज पुरुरवा ने यह गीत गाया था। श्रीमद् भागवतम में अत्यंत महान लोगों के उद्गार दिए गए, और उसको कभी कभी गीत या गाथा कहते हैं। श्री गोपी जनों ने गीत गाया है, कई गीत गोपियों के दिए हुए हैं। किसी किसी भक्त के मन में ऐसी उत्कंठा होती है कि दशम स्कंध की लीला सुना जाए, गोपियों का गीत या और सुनिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में वह स्वादिष्ट भोजन की तरह है। और ये जो प्रसंग है, यह बहुत शक्तिशाली दवा के समान है। आजकल देख रहे हैं ना, केवल भोजन करने से काम नहीं चलता है, कुछ न कुछ दवा भी लेते रहते हैं, जिससे रोग बहुत है। और भोजन न भी खाएं दो चार दिन तब भी ठीक रहेगा, लेकिन दवा चाहिए जरूर। तो आज के युग में दवा की उपयोगिता का अनुभव सबको है, और इसको सुन करके आप जरूर अनुभव करेंगे कि भगवान ने बहुत अच्छी दवाई दिया है। और भगवान की जो लीलाएं हैं वो दवा नहीं है, दवा भी है लेकिन ज्यादातर उनमें स्वाद है और उस आवेश में व्यक्ति ठीक ठीक नहीं पकड़ पाएगा, हो सकता है कि उस मंदाग्नि हो जाए और सब हो जाए, इसलिए दवा लेना चाहिए। और ये दवा फ्री दी जा रही है, इसका कोई दाम नहीं है। दाम यही है कि पीना चाहिए नींद छोड़ करके सावधानी से बैठ कर, जितना ही दाम। कभी कभी लोग इसकी कीमत इसीलिए नहीं करते हैं कि कुछ दाम नहीं लिया जाता है। हमने सुना है कि अमेरिका आदि देशों में अगर आप कोई चीज फ्री दीजिए तो लोग नहीं लेंगे, और कीमत लेकर के देंगे तो लेंगे। अगर पैसा नहीं लिया जाता है तो लोग समझते हैं कि बिल्कुल फालतू चीज, इसी से तो फ्री दे रहा है। अगर भगवान धन्वंतरी भी अमृत का कलश लेकर जाए और बांटने लगे वहां तो सब लोग समझेंगे जहर दे रहा है, इसको नहीं लेना। और विष भी दे लेकिन हाई दाम ले ले तो ले लेना। हाँ ठीक है, बोतलों में पानी मिलता है आजकल तो उसमें गुणवत्ता क्यों आदमी देखता है, इसलिए उसका दाम ज्यादा है। अगर खूब सुंदर पानी लाइए स्वादिष्ट हैंड पाइप का चंपाकल का, खूब अच्छा पानी है, लेकिन जब तक वो बोतल में बंद नहीं होगा तब तक उसकी कोई कीमत नहीं है। बोतल में रख दीजिए, एक दो महीने के बाद सड़ जाएगा, और दाम यदि 10-12 रुपए लीटर होगा तब सब लेंगे पिएंगे। हाँ ये ठीक है। सब कुछ इस संसार में धोखे में चल रहा है। एक बार की सत्य घटना आपको सुना रहा हूं। हमारे गुरु भाई आए थे बहुत वर्ष पहले हमारे गांव पर, 79 में या ऐसे कुछ, आचार्य रत्न उनका नाम था, इस समय वो छोड़ दिए संस्था। तो आए थे तो जाड़े का दिन था और वे रात को दूध पीते थे रोज, कई बार दूध पीते थे लेकिन रात में तो निश्चित दूध पीते थे, काऊ मिल्क उनको चाहिए था, गो दूध, भैंस का दूध नहीं, भैंस को कहते थे सुअर है, इनका दूध नहीं पिए, गाय का दूध पिए। तो गाय का दूध सुलभ नहीं था, जाड़े में गौवे कम दूध देती हैं। भैंस का दूध एक भक्त लाया, कह दिया कि ये भैंस का दूध है तो वो सूंघा और कहा कि बेकार नहीं पिया। तो मैं कह दिया कि अब कहां से दूध आएगा, दूसरे भक्त जो लाया था गोपी प्राण धन लाया, मैं कहा कि इसको फिर से गर्म करके लाइए और कहिए कि कृष्णा गौ का दूध है, श्यामा गौ, भैंस भी श्यामा होती है। तो गर्म करके और फिर लाए और कह दिए कि ये ब्लैक काऊ का मिल्क है, और सूंघा और पीने लगा, खाओ फर्स्ट क्लास। वास्तव में देखो कितना अंतर है, अरे उसको तो पिया नहीं था पहले, ये अनुभव था। तो फर्स्ट क्लास का काऊ मिल्क पी रहे। तो श्यामा सुरभि का दूध मिला था। इस तरह के अनुभव होते रहते हैं संसार में लोगों में, लेकिन वास्तव में उपादेय वस्तु वो है जिसे भगवान दे रहे हैं। तो भगवान के इन उपदेशों को एक महान औषधि के रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को रोग है, ये केवल सुगर रोग आदि ही नहीं है, सबसे भयावह रोग काम रोग है। कामनाएं जो संसार की हैं, बहुत ये हो जाए वो हो जाए, ये सबसे भयावह रोग है। और सुगर रोग तो ज्यादा से ज्यादा शरीर मारता है, लेकिन ये काम जो है अनेक शरीर बनाता है और मारता है, बनाता है और मारता है। शरीर बनता जाएगा मरता जाएगा, बनता जाएगा मरता जाएगा, इसलिए इसको नष्ट करना है। भगवान अपने श्रीमुख से महाराज पूर्वक अपने पूर्वज के उद्गार को दे रहे हैं और उसके लिए इमाम गाथा कह रहे हैं। भक्तों को बारंबार इन शब्दों पर विचार करना चाहिए, भगवान क्यों ऐसा इमाम शब्द क्यों कह रहे हैं। इमाम का अर्थ होता है यह, स्त्रीलिंग में यह गाथा। यह गाथा का अर्थ है सुप्रसिद्ध समाज में। पहले के समाज में बहुत बड़े लोगों का इतिहास गाया जाता था, इसीलिए लोग बड़े सुंदर होते थे, भक्त होते थे। तो सबसे पहले उनकी मोहावस्था का वर्णन कर रहे हैं। त्यक्त्वात्मानं व्रजन्तीं तां नग्नमुन्मत्तवनृपः विलपन् अन्वगा जाये घोरे तिष्ठेति विक्लवः। आत्मानं त्यक्त्वा व्रजन्तीं, एक दिन ऐसी दशा थी महाराज पुरुर्वा की, भगवान कहते हैं उनको छोड़कर उर्वशी जा रही थी, उनको नग्न देखकर और सेनागार से वो जा रही थी। ब्रजंती किस रूप में? आत्मानं त्यक्त्वा, उनको त्याग करके। महाराज पुरुरवा के लिए है आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, पुरुरवसम इति आयलम। महाराज आयल को, पुरुरवा को त्याग करके वह जा रही थी, तो उसके पीछे वे चले थे। ताम अन्वगात, उसके पीछे पीछे वे चले थे। और कैसे? विक्लव, विक्लव थे, बहुत दुख में थे, कातर थे और नग्न थे, नग्न उन्मत्तवत, बिना वस्त्र के थे और पागल की तरह वे उसके पीछे पीछे जा रहे थे तथा विलाप कर रहे थे। विलपन, क्या विलाप कर रहे थे? जाए घोरे तिष्ठ इति, भगवान थोड़े में उनके विलाप का वर्णन कर रहे हैं। हे जाए, हे घोरे, हे कठोर हृदय वाली, तिष्ठ, रुको, बात करो इत्यादि, इस तरह से कहते हैं। विलपन, विलाप करते हुए, उर्वशी के गुण गाते हुए, अपनी दीनता, अपनी हीनता, उर्वशी के अभाव में अपने दुख का वर्णन कर रहे थे, इसको विलाप कहते हैं। अपने दुख को जब व्यक्त किया जाता है रोते समय, तो इसको विलाप कहा जाता है। इस तरह से जा रहे थे, तो विलाप करते हुए जा रहे थे और वो उन्मत्त की तरह नग्न थे। यह उनकी विरह अवस्था का वर्णन भगवान संक्षेप में किए। श्रीधर स्वामी जी टीका में लिखते हैं कि ये कथा नवम स्कंधानुसारेण द्रष्टव्य, नवम स्कंध में देखना चाहिए इसको। और नवम स्कंध में जब टीका करते हैं, उनके वैराग्य का वर्णन थोड़े में करते हैं कि एकादश स्कंध स्कंध द्रष्टव्य, इन दोनों का लिंक है। तो नवम स्कंध की कथा तो सुन चुके हैं पहले, किस तरह महाराज आयल विलाप करते हुए जा रहे हैं। तो उसके बाद गंधर्वों ने जब उनको अग्निस्थाली दिया और उस अग्निस्थाली की सहायता से वे यज्ञ किए और उर्वशी के घर चले, उर्वशी लोक में रहने लगे। वहां पर निरंतर बिना किसी बाधा के और समस्त सुविधाओं के साथ कई वर्षों तक, अनेक वर्षों तक उन्होंने अखंड भोगों को भोगा और उर्वशी के द्वारा इनका विवेक इतना हर लिया गया था कि वे बीती हुई या आने वाली रात्रियों की, ये कौन दिन चल रहा है, कौन तिथि है, कब सूर्य अस्त हुआ, कब डूबा, इसका भी पता उनको नहीं रहा। कामान तृप्तो नुजुसं छुल्लकान वर्ष जामिनी न वेद यान्तिर् नायान्तिर् उर्वश्या कृष्ण चेतनः। प्राक्तनीं मोहावस्थाम आह त्यक्त्वा इति, और वैक्लव्य कारणम आह, विक्लव शब्द आया है, क्यों विकल हो गए थे? कामान इति वर्षाणाम यामिनी रात्रि जानतिर प्रियान्तिर् न वेद। महाराज कुरुर्वा बहुत वर्षों तक छुल्लकान कामान अनुजसन, क्षुद्र काम को भोगते रहे। कामान, काम का कभी कभी अर्थ होता है काम्यते निर्भि इति काम, मनुष्य जिन वस्तुओं की इच्छा करता है उसको काम कहते हैं, इच्छा को भी काम कहते हैं, और जिन वस्तुओं की वो इच्छा करता है उन वस्तुओं को भी काम कहते हैं। बहुत बहुत वर्षों तक महाराज पुरुर्वा विषयों को भोगते रहे। यह विषयों से तात्पर्य है भोजन या शिष्ण का विषय या श्रवण का विषय, स्पर्श का विषय, नासिका के विषय, सभी उत्कृष्ट कोटि के, और विशेष करके उर्वशी के साथ सहवास संभोग, इनके विषय में भगवान अपने मंतव्य दे रहे हैं। ये जो संसार के भोग हैं ये छुल्लकान द्वारा या दूसरे के द्वारा प्रत्येक जीव में सुख की एक चिरंतन वासना है, वो वासना जा नहीं रही। भले व्यक्ति काम बदल दे, स्थान बदल दे, उपाय बदल दे, लेकिन एक चीज की जो लालसा है वो उससे दूर नहीं हो रही है, वो है सुख लालसा, सुख प्राप्ति की लालसा। तो ध्यान रखना चाहिए कि जीव स्पिरिचुअल है तो उसकी मांग, उसकी लालसा सुख की जो है वो स्पिरिचुअल है, परंतु उस नित्य सुख को वह संसारिक वस्तुओं में देख रहा है, उन्हें वो प्राप्त करने की चेष्टा करता है, और प्राप्त होने पर अपनी शक्ति भर उसे भोगना चाहता है। लेकिन चाहे संसार का सबसे बड़ा भोग उसे दे दिया जाए पर फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब माया के द्वारा उत्पन्न किए हुए वस्तुएं। अच्छा, सुख भी प्रतीत होता है, मान लीजिए भ्रम का सुख, वह भी सुख बहुत विपुल नहीं होता, वो थोड़ा होता। शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है कि अगर जीव की प्यास, सुख प्राप्ति की लालसा एक समुद्र के समान विशाल है, तो जो विषयों का सुख उसे मिलता है, स्वर्ग में मिले चाहे कहीं मिले, तो जीव के लिए वह एक सीकर के बराबर होता है। तो किसी को बहुत प्यास लगी है और वह मान लीजिए एक लोटा पानी पी सकता है, पूरा समुद्र पी सकता है, ऐसा कहीं उसकी प्यास इतनी है, लेकिन उसको सीक में बोर करके और एक छोटा सा बिंदु दिया जाए, इसको पी लो, तो क्या उसको पीने से उसको कभी तृप्ति हो सकती है? और वो अभी पानी नहीं, किरासन तेल दिया जाए, एक बूंद किरासन तेल दिया जाए और कहा जाए कि तुम अब तृप्त हो जाओ, क्या होगा तृप्त? मुख में पड़ने पर और आया करके थूक देगा, वो पी नहीं सकता है मिट्टी का तेल, उसे पानी की प्यास है और वह भी एक दो लोटा चाहिए, सीक में बोर करके देने से तृप्त नहीं हो सकता। तो एक तो पानी नहीं मिल रहा है, किरोसिन मिल रहा है या और दढ़ुआ मिल रहा है। जो कुछ मिल रहा है उसे वो तृप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सुख चाहता है वो मिल ही नहीं रहा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने, चंडीदास जी ने पद में लिखा है कि मैं अमृत का समुद्र समझ करके स्नान करने चली, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये तेजाब का समुद्र है, अम्ल भरा है, तो विष का समुद्र।
तो इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं वास्तव में व्यक्ति उनका उनको ग्रहण करना चाहता है कि मैं सुख पालूं, परंतु देखिए सबके जीवन का अनुभव है, वो बता सकता है कि नहीं सुख नहीं है इसमें, उल्टे दुख है। और कहीं कोई पानी के भ्रम में जाकर के जहर पी ले तो जहर पीने पर तो जो पहले सुख था वो भी गया, और वो हाय करेगा, छटपटाएगा, उसे हॉस्पिटलाइज किया जाएगा और फिर भी मर सकते हैं। भयानक जहर के लिए जानिया सुनिया विष खाई में, इसी बात को भगवान यहाँ पर छुल्लकान कह रहे, कामन, कामन का विशेषण। छुल्लकान का अर्थ मात्रा की दृष्टि से भगवान नहीं बोल रहे, गुणवत्ता की दृष्टि से बोल रहे। मात्रा की दृष्टि देखा जाए अमाउंट, तो महाराज पुरुरवा को कुछ भी बाकी सुख नहीं थे, और संसार की सबसे श्रेष्ठ स्त्री उनको मिली थी, और गंधर्व लोक मिला था जहाँ भोग भोगना ही एकमात्र काम है, और कोई काम नहीं करना है, और न कोई अभाव, और वह भी भगवान कह रहे हैं कि महाराज पुरुरवा विषय भोग में इतना लीन रहते थे, इतना तल्लीन की कभी उनको यह समझ में नहीं आया कि सूर्य कब उगा कब डूबा, आज कौन दिन है, एकादशी है कि द्वादशी है कि, और ऐसे 1900 आदि का तो कोई प्रश्न ही नहीं, 1920 30 या 2000, क्योंकि ये ईसा से बहुत पहले की घटना है, ये तो बाद में क्रिश्चियनों ने चला दिया, जो भी गणना है सब क्राइस्ट के इर्द गिर्द चलती है, यहाँ तक कि क्राइस्ट से पीछे की बातों को कहते हैं तो उसको बीसी कर, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले, और उधर बहुत दिन पीछे नहीं जाते हैं, परंतु यह घटना तो बहुत पहले की है। तो महाराज पुरुरवा को कुछ भी ध्यान नहीं रहता था, विषय भोग में इतने आविष्ट थे, ऐसा क्यों? तो उर्वश्या आकृष्ट चेतना, इसके दो अर्थ है, उर्वशी में ही उनका चेतन चित्त आकृष्ट था, अथवा उर्वशी के द्वारा आकृष्ट था, उर्वशी आकृष्ट चेतना। चेतना का अर्थ है विवेक, ज्ञान, सद्विचार, आकृष्ट, आकृष्ट का अर्थ पूरा पूरा खींच लेना, समाप्त कर देना, आकृष्ट का कभी कभी अर्थ होता है नाश हो जाना, आकृष्ट चेत में, अथवा चित्तवृत्ति इनकी पूर्ण रूप से उर्वशी में लगी हुई थी, और इसीलिए वे नहीं समझ पाए, बहुत भोगे। छुल्लकान कामन अनुजुसन, अनुजुसन का अर्थ है निरंतर भोगों में रहे, कितने वर्षों तक, वर्ष यामिनी, वर्ष वर्ष तक, कई लाखों वर्ष तक ये रहे उर्वशी के लोक में, और निरंतर विषय भोग में रहे, लेकिन फिर भी न तृप्त अतृप्त, ऐसा लगता था कि अभी तो कुछ सुख पाया ही नहीं, सारा सुख बाकी रह गया। इस संसार का भी यही हिसाब है, आदमी विषय भोग में रहता है, परिवार में, संसार में, लेकिन मरते दम तक भी यह नहीं कहता है कि अब मैं सुखी हो गया, अब कोई बात नहीं, वो सब ठीक हो गया, तृप्ति का अनुभव नहीं होता, सोचता है और दिन जी जाऊं, और ऐसे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, अरे जब इतना दिन विषय भोग कर सुख नहीं हुआ तो अब क्या होगा, तो शरीर तो भोग के लायक रहता ही नहीं। न वेद यांतिर ना यांतिर उर्वश्य कृष्ण चेतन, यांति का अर्थ बीतती हुई या बीती हुई, और अनायांति का अर्थ है आगामिनी, किसी भी मनुष्य को समय पर दिन पर जरूर ध्यान रखना चाहिए कि दिन बीत रहा है जीवन का, तो कितना बीत गया और अब कितना बाकी है ये जरूर विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति इस पर विचार नहीं करता है वास्तव में वह सिद्धि नहीं पा सकता है, काल से भय करना चाहिए, भगवान सूर्य उग रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, तो जीवन की अवधि काट रहे हैं। भगवान कहते हैं कि वे इतना भोगों में आकृष्ट हो गए थे कि यान्ति ही अनायान्ति ही वर्ष जामिनी न वेद। तो वर्ष जामिनी का अर्थ यह है कि केवल इतना ही जान पाते थे कि वर्ष बीता, एक अर्थ यह है। लेकिन अब वर्ष में कौन महीना चल रहा है, कौन तिथि है, तिथि छोड़ दीजिए, सवेरा हुआ है कि शाम हुआ है, ये भी पता उनको नहीं, इतना आविष्ट। और दुनिया का कार्य धंधा करना हो तो वहां तो चलता ही नहीं ये काम धंधा, ये काम धंधा सब सब पृथ्वी पर है, वहां नहीं चलता। परंतु फिर भी देवता भगवान का भजन करते हैं, सूर्य भगवान अस्त होते हैं, उदित होते हैं, तो उस समय संध्या वंदन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, वे भी भोगों में रहते हैं परंतु फिर भी भगवान की भक्ति करते हैं। परंतु महाराज पुरुरवा तो ऐसे भूले कि उनको कुछ भी याद नहीं था। तो जब उन्हें वैराग्य हुआ, उर्वशी के लोक से और उर्वशी से निर्वीण हो गए, उब गए, तब उन्होंने यह गाथा गाया था। वहां स्वर्ग में ही ये गाथा गाना चालू किए थे और गाथा गाते हुए ही पृथ्वी पर आए। और जब भी कोई व्यक्ति उनसे मिलता था तो अपने जीवन का अनुभव कहने लगते थे, यही अनुभव, इसीलिए यह गाथा बन गई। गाने का अर्थ है वर्णन करना, बार बार वर्णन करना, वर्णन करना। आयला हुआ अहो मे मोह विस्तार काम कश्मल चेत सह दिव्या गृहित कंठस्य नायु खंडाई में स्मृतः। अहो मे मोह विस्तार, अहो मेरे मोह की सीमा नहीं है, असीम मोह विस्तार। मोह विस्तार बहुत सुंदर शब्द दे रहे हैं। मोह का अर्थ है ज्ञानाभाव, ज्ञान का अभाव, विवेक का अभाव। इतना अभाव था, इतना अभाव था कि भगवान में कभी सुख देखे ही नहीं वे। और भी जो शुभ कार्य थे उनमें सुख नहीं देखे, केवल उर्वशी में ही सारा सुख देखते रहे। काम कश्मल चेत सर, काम से व्याकुल चित्त वाला। कस्मल का अर्थ व्याकुलता भी होता है, कातरता। काम वासना से चित्त व्याकुल रहता था, केवल उर्वशी में अतिष्ट रहता था। ऐसे ऐसा व्यक्ति मैं और मेरा मोह विस्तार, एक काम कस्मल चेत सी व्यक्ति में गृहित कंठस्य विशेषण। मे के दो विशेषण है, काम कस्मल चेतसह और गृहित कंठस्य। मेरा मोह विस्तार, इस मोह विस्तार से यह ध्वनित हो रहा है कि अवश्य संसार का भोग भोगना चाहिए, अज्ञान सबको घेरता है, लेकिन हमारे जैसा अज्ञान नहीं है। इतना विस्तार, ज्ञान का इतना अभाव। ज्ञान होने पर कह रहे हैं, पूरा पूरा ज्ञान हो चुका है, निर्वीण हो चुके हैं, उस समय कहते हैं ओहो कितना बड़ा ज्ञानी हूं, कितना विवेकहीन हूं, मेरे मन में केवल काम बसा हुआ था और देवी ने, उर्वशी ने मेरा ऐसा कंठ पकड़ा कि मुझे यह भी नहीं स्मरण रहा कि मेरे जीवन के की बहुत बड़ी अवधि बीत गई। आयु खंडाई में स्मृता, गृहित कंठ का अर्थ है उर्वशी के द्वारा आलिंगित देहस्य, गृहित कंठस्य। महाराज पुरुरवा अपनी उस दशा का वर्णन कर रहे हैं जब वे पूर्ण अज्ञान में थे, तो कहते हैं कि उर्वशी जब मेरे कंठ को पकड़ती थी तो मैं उसी को अपने जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानता था। दिव्य गृहित कंठस्थ।
आज उसको वे इस रूप में मान रहे हैं कि उर्वशी के द्वारा मेरा जो गला पकड़ा गया, कंठ पकड़ा गया, वास्तव में वो उस समय मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे लिए वही सबसे भारी फांसी हो गई। ध्यान रखना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम में किसी एक वस्तु का नाम दिया जा रहा है तो वह केवल उसी वस्तु के लिए नहीं, और यहाँ पर स्त्री के विषय में बात कही जा रही है, उर्वशी के विषय में, तो इसके द्वारा संसार की जितनी भी भोग्य वस्तुएं हैं सबके लिए समझना चाहिए। तो महाराज पुरुर्वा उर्वशी का आलिंगन करते थे, लेकिन जब वह इनका आलिंगन करती थी तो उसको ये कह रहे हैं कि इसके कारण मेरा मोह और बढ़ जाता था, और उस दशा में मैं यही इच्छा करता था कि सदा इसके बाहों का आलिंगन मुझे प्राप्त हो, और ऐसे तथाकथित सुख में विभोर होकर के इन्हें आयु खंडा न स्मृता, मेरे जीवन के अवधि के ये खंड बीतते गए और मैं नहीं समझा। आयु खंड, किसी भी मनुष्य के या जीव की जो आयु है, जो जीवन अवधि है, वो अनेक खंडों में बटी हुई है। ऐसे तो सूक्ष्म खंड बहुत बहुत हैं, लेकिन स्थूल खंड में रात और दिन है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, इसे आयु खंड एक प्रथम इकाई के रूप में वर्णन कर दो। कितनी रात बीत गई, कितने दिन बीत गए, और यहाँ रात्रि शब्द से 24 घंटा समझना चाहिए। संस्कृत भाषा में एक विशेष प्रकरण है, कहने की एक शैली है कि 24 घंटा का वर्णन किया जाएगा तो कभी कभी तो वर्णन करते हैं अहो रात्र, दिन और रात, और कभी कभी केवल रात कह देंगे तो उसका अर्थ दिन भी हो जाएगा, जैसे नवरात्र। नवरात्र आता है चैत्र में और अश्विन में, सभी इस शब्द से परिचित हैं, लेकिन उस नवरात्र का मतलब यह नहीं हुआ केवल 9 दिन की रात, क्या दिन नहीं आते हैं उसमें, 9 दिन भी आएंगे और 9 रात भी, परंतु केवल रात्रि शब्द से, रात्र शब्द से पूरा 24 घंटे का बोध हो जाता है। महाराज पुरुर्वा के कहने का आशय यही, आयु खंडा, हमारे आयु के बहुत से खंड बीत गए, और खंड खंड मिला करके ही तो एक अखंड आयु बनती है। मेरे जीवन की अवधि बीत गई, शरीर में रहने वाली बहुत अधिक बीत गई, कहने का आशय ये है। यद्यपि वो उस समय भी युवक थे, अव्याहत इंद्रियों में शक्ति थी, पूर्ण युवक वे दिखते थे, परंतु फिर भी कह रहे हैं कि मेरे जीवन की अवधि बहुत बीत गई, आयु खंड। अपने जीवन की जो अवधि बीत रही है, तो जिसकी जीवन की अवधि बीत रही है उसी को तो उसका आकलन करना चाहिए कि कितना दिन बीत गया, कितना दिन बाकी है, और बीता तो कैसे बीत गया व्यर्थ, और अब व्यर्थ नहीं बिताऊंगा, अबलो नशानी अबना नशही हूं, ये निश्चय होना चाहिए कि इतना दिन मेरा व्यर्थ बीत गया, लेकिन अब जो भी जीवन के दिन है अब व्यर्थ नहीं बीतने दूंगा। आयु खंड बड़ा भयदायक शब्द, आयु खंडा, इसमें इमें स्मृता, स्मृता का अर्थ मैंने आकलन नहीं किया, कभी ध्यान नहीं रहा कि मेरा मेरे जीवन के अंश दिन और रात इस तरह व्यर्थ बीत रहे। बीतने के लिए तो बीत ही जाएंगे किसी के भी, लेकिन एक स्मरण युक्त जीवन बीतना चाहिए, भय होना चाहिए, खास करके सूर्य के उगने पर और डूबने पर। एक विवेकी व्यक्ति अवश्य विचार करता है, हो यदि सूर्य उगा तो उस समय उसे भय होता है, मेरी रात बीत गई, दिन भी कटने लगा, और शाम के समय ये ध्यान आना चाहिए कि हाय हाय दिन बीत गया, पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी, पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि, फिर सूर्य उगेगा डूब जाएगा, चंद्रमा उगेगा वो भी डूब जाएगा, अर्थात दिन चालू होता है बीत जाता है, रात चालू होते है बीत, काल से किम गच्छति जाति यौवनम,
तथापि लोक कथितम न बुझते, काल नहीं बीत रहा है। लोग कहते हैं समय बीत रहा है, समय समय काहे को बीतने जा, हम बीत रहे। भर्तृहरि जी कहते हैं कालो न जाता वजमे बजाता, काल नहीं बीता है हम बीत गए। काल समय तो वैसे ही सूर्य उसी तरह से उग रहे हैं, उसी प्रकार डूब रहे हैं, चंद्रमा उग रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, हवा चल रही है, पृथ्वी है, ये तो जैसे हैं वैसे रह जाएंगे, हम ही नहीं रहेंगे। कालो न जाता वयमे बजाते, काल नहीं बीत रहा है हम बीत रहे। कालस्य किम गच्छति याति यौवनम्, काल का क्या बीत रहा है, जवानी जा रही है, काल नहीं बीत रहा। कभी कभी लोग ऐसा अनुभव करते हैं काल जो है लगता है किसी ट्रेन की तरह सिग्नल ना पा करके रुका हुआ, और कहते हैं थोड़ा टाइम पास के लिए ये काम करो, कि टाइम रुका हुआ है, घड़ी रुक गई है क्या है? और घड़ी रुक भी जाए तो टाइम थोड़े रुकेगा, सारे टाइम का मीटर सूर्य भगवान है, वो नहीं रुकते हैं एक सेकेंड भी, मतलब टाइम पास करने के लिए, समय बिताने के लिए कुछ करना है, और वो तो ऐसे भी बीत जाएगा। और आजकल तो मूंगफली का नाम टाइम पास फल रख दो, टाइम पास। उस समय ऐसा विवेक नहीं होता है, भगवान का नाम जप कीजिए, छोड़िए सारी बातों को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमारे जीवन की अवधि खंड खंड में बटी हुई है, यदि एक का कनेक्शन दूसरे से है लेकिन बस सत्ता भर है, एक रात पूर्ण आयु है, एक दिन पूर्ण आयु है, घंटा वर्ष पूर्ण है, ये खंड खंड मिला करके जीवन की अवधि है। महाराज पुरोहित के इस उद्गार को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपने विषय में विचार करना चाहिए कि हमारे आयु के कितने खंड चले गए और अब कितना खंड बाकी है। तो मान लीजिए जिसके आयु का 60 वर्ष बीत गया तो महाखंड तो बीत गया और थोड़ा सा खंड रह गया, इस तरह से आयु बीत जाती है। तो बहुत सतर्क होने की चीज है, ये कथा सबके लिए है, व्यक्तिगत अपने पर लागू करना चाहिए। भले उर्वशी में आकृष्ट चेतना नहीं है लेकिन संसार की तो छोटी छोटी बातों में ही उसी प्रकार का आवेश चिताविष्ट है, चाहे किसी भी वस्तु में हो। जैसे मैं कहा उर्वशी तो एक उपलक्षण है, लेकिन देखना चाहिए कि हमारा चित किस वस्तु में उलझा हुआ, क्या चाह रहा है, और उसी वस्तु की प्राप्ति में और उसको भोगने में ही हम जीवन की सार्थकता समझ लेते हैं, तो व्यर्थ गया समय। और भगवान कृपा करके किसी मनुष्य को समय देते हैं और इसके साथ साथ कुछ शक्तियां देते हैं, शरीर में बुद्धि देते हैं और इंद्रियां देते हैं, और कहते हैं ये काम पूरा कर लेना है। उन्हीं शक्तियों से और इसी शरीर से तथा उसी समय में हम लोग जो टास्क दिया गया उसको नहीं करते हैं, दूसरा व्यर्थ कार्य करके और अपने पर बंधन डाल देते हैं। स्मृता शब्द पर ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्मरण करना है सब समय कि हमारा आयु व्यर्थ न बीते, भगवान का भजन। उसी को और स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, ना हम वेदा भी निर्मुक्त सूर्यो युवा भित तो मुया मुसितो वर्ष पोगा नाम बता हानि गता नित। हाय हाय बत बत खेद, खेद में कह रहे हैं ओहो हाय हाय। और उतक अर्थ अपि अमुया मुसित अहम अभिनिर्मुक्त अभ्युदित वा सूर्य न वेद वर्ष पूगा नाम हानि गता। अमया मुषित अहम, इस उर्वशी के द्वारा वंचित होकर अविवेकी बनकर मैं उगते हुए या डूबते हुए सूरज को भी नहीं जाना। अभी निर्मुक्त का अर्थ अस्त होते हुए और अभ्युदिता का अर्थ उदित होते हुए। सूरज कब उग रहा है, कब डूब रहा है, कौन काल चल रहा है, किस समय क्या करना चाहिए, मुझे कोई स्मरण नहीं रहा। हाय हाय, वर्ष पूगा नाम अहानी गतानी, अनेक वर्षों के दिन मेरे व्यर्थ चले गए। भगवान ने मुझे बहुत समय दिया था, एक तो वर्ष, और वर्ष के भीतर भी 365 दिन, 60 दिन, एक एक दिन बहुत काफी समय है भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन वर्ष समूहों के मेरे अहानी दिनानी गतानी उतहाय, वर्ष का वर्ष बीत गया और वर्ष में भी अनेक महीने, अनेक दिन, दिन में भी अनेक घंटे, बहुत बहुत समय मिला, लेकिन सारा समय व्यर्थ बिता दिया मैंने। किस कार्य में बिता दिया? उर्वशी के साथ रहने में, विहार में बिता दिया। इस श्लोक में एक रचना की दृष्टि से विशेषता है कि द्वितीय को प्रथमा में लिखा गया। अभी निर्मुक्त या अभी उदित सूर्य अहम न वेद, तो अहम करता है प्रथमा है और सूर्य यहाँ पर द्वितीय में है, लेकिन फिर भी द्वितीयार्थे प्रथमा नियम है यह। मैं सूर्य को डूबते हुए और उगते हुए नहीं जान पाया। बत शब्द खेद के अर्थ में है, इसका हिंदी में अनुवाद होता है हाय, बहुत दुख की बात है। वर्ष पूगा नाम अहानी गतानी, समूह के समूह वर्ष बीते और इन वर्षों के भीतर अनेक दिन बीते गए, बीत गए, बीत गए। हाय, मैं क्यों नहीं कृष्ण का भजन किया, इस बात के लिए बहुत शोक हो रहा है। और अब उससे अपनी प्राक्तनी दशा का वर्णन करते हैं। जब अविवेक छाया था तो अविवेक में भी घनीभूत अविवेक कब था उसको बता रहे हैं कि अहो मे आत्म सम्मोहो जनात्मा योषिताम कृतः क्रीड़ा मृगस चक्रवर्ती नरदेव शिखामणि। अहो मे आत्मोह, आत्म सम्मोह, मेरे मन का महामोह तो देखो, कितना बड़ा मोह था, कितना बड़ा अज्ञान मेरे मन में बसा हुआ था। उस अज्ञान ने मुझे स्त्रियों का बानर बना दिया। योषिताम क्रीड़ा मृग, क्रीड़ा मृग का अर्थ है खेलने के लिए पशु होता है, नाचता है, बानर को क्रीड़ा मृग कहते। अच्छा, क्रीड़ा मृग बानर को अगर मदारी नचावे तो कुछ तो ठीक है, लेकिन हमको स्त्रियों ने नचा दिया। यहाँ बहुवचन में बोल रहे हैं एक ही स्त्री के लिए, लेकिन अब उनको शोक हो रहा है कि हाय हाय, मुझको स्त्रियों ने नचा दिया, मतलब उर्वशी ने नचा दिया। नचाने का मतलब है कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराया, उसकी जो इच्छा होती थी उसी को पूरा करने में मैं रहता था। और मैं कैसा, चक्रवर्ती नरदेव शिखामणि, राजाओं का मैं शिखामणि हूं। शिखामणि का अर्थ होता है शिखा पर, चूड़ामणि कहते हैं, जो सिर पर स्त्रियां गहना धारण करती हैं उसको चूड़ामणि या शिखामणि कहते हैं। जितने भी राजा होंगे उनका मैं मुकुट, मुकुटमणि, सबसे श्रेष्ठ राजा। तो सबसे श्रेष्ठ राजा वही होगा ना जिसमें बहुत बड़ा बल, पराक्रम, बुद्धि आदि हो, तब तो सारे विश्व को अपने वश में कर सकते। तो मैं ऐसा राजा था, नरदेव शिखामणि, राजा शिरोमणि और चक्रवर्ती, अखंड पृथ्वी का शासक मैं था। लेकिन ऐसे महान पराक्रमी, महान तेजस्वी राजा को, मुझको उर्वशी ने, या उर्वशी को उपलक्ष्य स्त्रियों ने मुझे क्रीड़ा मृग बना लिया। क्रीड़ा मृग कृत, क्रीड़ा मृग कर लिया। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाच ही नट मरकट की नाई। यह बहुत शोक की बात है। इस जीवन में भले और कुछ आदमी हो जाए, लेकिन स्त्री का बानर नहीं होना चाहिए। स्त्री नचावे अपनी इच्छा के अनुसार, यह ठीक नहीं। तो उतने बड़े सम्राट को, पराक्रमी को स्त्री के बस में रहना पड़ा। अब बड़ा शोक हो रहा है। उस समय तो सौभाग्य मानते थे। जो इससे भी अधिक सम्मोह देखिए बता रहे हैं। सब परिच्छदम आत्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरम यान्तिं स्त्रियं चानुगमं नग्न उन्मत्तवद् रुदन। मैं कितना उसमें आसक्त था और वह मुझसे कितना निरपेक्ष थी, इसको बता रहे हैं। अथवा श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी इस श्लोक की टीका में कहते हैं, ननु प्रणय कुपितायाः अनुनयार्थम अधीनता युक्ता एव सत्यम न तु अत्र तदस्तित्या। तो महाराज पूर्व कहते हैं कि मैं उर्वशी का बानर बन गया था। इतना बड़ा राजा होते हुए, सम्राट होते हुए भी उसके उसके अधीन हो गया था। तो इस पर मानो महाराज पूर्व से कहा जा सकता है कि मान लीजिए आपकी पत्नी उर्वशी यदि कुपित हो गई थी, प्रणय कुपिता, प्रेम में क्रोधित हो गई थी, तो उसके अधीन हो जाना, उसके चरण पर मनाना, ये तो स्वाभाविक ही है। इसमें कोई अयुक्त बात नहीं है, युक्त है। स्त्री प्रणय कुपित होती है, प्रेम में पति पर क्रोध करती है, तो उस समय उसके पैर पर गिरना, मनाना, अनेक वादा करना ठीक ही है। इसमें क्या गलती है? तब कहते हैं अगर प्रणय कुपिता हुई होती तब ना, वो तो छोड़ कर जा रही थी। ये प्रेम में कुपित हुई होती और उसके चरण पर गिर कर मनाता, मान गई होती तब तो अच्छा था, लेकिन वो तो मुझको छोड़ कर जा रही थी, चली ही गई, और फिर भी मैं उसके पीछे जा रहा था। मेरे लज्जा, मेरे निर्लज्जता की कोई सीमा नहीं। सब परिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरम जानतिम स्त्रियम चानुगमम नग्न उन्मत्तवद् रुदन। ईश्वरम, मैं इस विश्व का स्वामी हूँ, राजा हूँ, लेकिन मुझको तो छोड़ करके जा रही थी। इतना ही नहीं, सब परिच्छदम, मेरे साम्राज्य को, मेरे द्वारा उपस्थापित भोगों को, सबको छोड़ करके जा रही थी। प्रेम कोप से नहीं जा रही थी, उपेक्षा करके जा रही थी। और किस तरह से जा रही थी? तृणम इव हित्वा, तृण की तरह छोड़कर जा रही थी। जैसे हम लोग रास्ता पकड़ करके चलते हैं तो रास्ते में कितने तृण पड़े होते हैं, तो क्या हम उनकी अपेक्षा करते हैं कि इसको इकट्ठा कर ले या पैकेट में रख? कितने तृण छूटते रहते, नगण समझ, मुझको कुछ भी न समझ करके, तृण की तरह हीन करके जा रही थी। तृणमिव आत्मा न, मुझे छोड़कर जा रही थी। और यह भी है कि यहाँ से वो कुछ ले करके भी नहीं गई, सब कुछ छोड़ करके, उसको मेरा राज या मेरा देह या मेरा सब कुछ तृण जैसा था। जा रही थी तो जाए, लेकिन उसके पीछे मैं चला। यान्तिम स्त्रियम च अनुगमम, मैं उसके पीछे अनुगमन कर रहा था। और वो अभी कैसे नग्न उन्मत्तवद् रुदन, नग्न उसके पीछे जा रहा था, पागल की तरह हो गया था और रोते हुए जा रहा था, विलाप करते हुए जा रहा। मान जाओ घोरे जाए इत्यादि कहता है। ओहो, मैं इतना ज्ञान में डूबा हुआ था, ज्ञान होने पर ही बातें कह रहे हैं। नग्न उन्मत्तवद् रुदन, यहाँ रुदन शब्द का अर्थ केवल आंख से आंसू बहाना, फफक कर रोना ही नहीं हुआ। उसको सुना सुना कर कहते थे आत्महत्या कर लूंगा, मेरे देह को गिद्ध खाएंगे, ब्रिक खाएंगे, ये होगा वो होगा, मैं कैसे जीऊंगा। परंतु ये ठीक है, मान लीजिए आपको विरह हुआ विरह का दुख आप रो रहे थे तो उसने क्या किया, तो छोड़कर चली गई, फिर भी नहीं मानी। मतलब मेरी इस दुर्दशा पर भी उसको ध्यान नहीं आया। एक प्रकार से तो उसने कह दिया आत्महत्या करो चाहे मरो, हमको तो रहना नहीं, ऐसा कह दिया। फिर भी मैं निर्लज्ज था कि उसके पीछे जा रहा था, और उसके बाद भी मैं यज्ञ किया और वशी लोक में गया। मेरी निर्लज्जता की कोई सीमा नहीं, इतना निर्लज्ज हो गया। आमी जार लागी मरी उलटी न चाय हरी। गोपियां कहती हैं कि हम जिसके लिए मर रही हैं सखी, आज वो रथ पर बैठ कर अक्रूर के हमारे तरफ देख भी नहीं रहे। हमने जिसके लिए घर द्वार छोड़ा सब छोड़ा, वे हमारे तरफ देख भी नहीं रहे। इसके ठीक विरुद्ध है, मतलब प्राकृत धारणा की बात की जा रही है कि मैं उसके पीछे जा रहा था, सब कुछ छोड़ करके चले गए। कुतस्तस्यानुभाव स्यात् तेज ईषत्वमेव या यो न गच्छन् स्त्रियं जानतीं खर्वत् पाद ताडितम्। लेकिन कुछ भी हो महाराज, पुरुर्वा के अनुभव के विषय में, अनुभाव के विषय में प्रशंसा की जा सकती है। ठीक है, जो कुछ भी हुआ लेकिन अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गए, अब तो आप अपने स्वरूप में हैं। तो ये कहते हैं अरे स्वरूप में क्या हुआ, कहां उस व्यक्ति का अनुभव रहा, उसमें तेज कहां रहा, उसकी नियंत्रण शक्ति कहां रही जो भागने वाली उपेक्षा करने वाली स्त्री के पीछे पीछे जा रहा था, उस तरह से जैसे एक गधा किसी गधे के पीछे चलता है और वो दुलत्ती मारती है फिर भी सहता हुआ जाता। ये दशा क्या मुझ में तेज है और क्या ईश्वत्व है, क्या अनुभव है। अनुभव का अर्थ तत्व निश्चय। हमने क्या इस संसार में असली वस्तु को समझा, नहीं समझा, बिल्कुल नहीं समझा। मैंने भगवान को नहीं समझा, उनके नाम को, गुण को, लीला को कोई महत्व नहीं दिया। मैं उस स्त्री के पीछे पीछे जा रहा था। एक से कारण दे रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझ में तत्व निश्चय नहीं था, मुझ में ज्ञान का अभाव था। ज्ञान को अनुभव कहते हैं। कहां ज्ञान है और कहां तेज है, दूसरों को बस में कर लेने की शक्ति नहीं मानता हूं मैं। सारा संसार जीत लूं, सभी मेरे अधीन हो जाएंगे, फिर वही मैं एक स्त्री के द्वारा जीत लिया गया तो मुझमें तेज कहां है और कहां मुझमें कंट्रोलिंग पावर है, क्या मुझमें ईश्वत्व है। मैं भी मानता था कि मैं चतुरंगड़ी सेना को बस में रखता हूँ, अनेक महारथियों को बस में रखता हूँ, सारे विश्व को बस में रखता हूँ, लेकिन मेरा अभिमान समाप्त हो गया। अब मुझे कभी भाव नहीं होता है कि मुझमें कुछ नियंत्रण शक्ति है, मुझमें तेज है या मुझे कुछ ज्ञान, कुछ नहीं। अरे जो अनगच्छन स्त्रियम जानती, जो जाती हुई स्त्री के पीछे पीछे जा रहा है, उस दशा का स्मरण हो रहा है। जाती हुई, भागती हुई स्त्री के पीछे जा रहा था और वह भी खरवत पाद ताड़ित, खरवत गद्दा की तरह जा रहा था। जो लोक में देखा हुआ विषय है कि किसी गधे के पीछे गधा चलता है, तुच्छ सुख की याचना करता हुआ चलता है, लेकिन वह सुख उसे प्राप्त नहीं होता है और उल्टे गधी बहुत जोर से लात से मारती है, बहुत कड़ा प्रहार होता है, फिर भी याचना करता हुआ चलता है। यह दुलत्ती मारना क्या हुआ दुर्वशी के द्वारा, वो था उसके कठोर वचन। जब कहती है मां मृथा पुरुषोसी तुम, आप पुरुष हैं, आप मत मरिए, आपको कहीं सचमुच भेड़िए ना खा जाए, आपको पता नहीं है कि स्त्रियों का सख्य स्थिर नहीं होता है, आप ऐसे पुरुष हैं, यह कीजिए वह कीजिए ऐसे कीजिए। यह बहुत बड़ी उपेक्षा थी, बहुत बड़ा अपमान था महाराज पुरुर्वा का। तो उसी को वे कह रहे पाद ताड़ित, पैर का आघात सह। उर्वशी ने मुझे बात से मारा, वो मैं ऐसा मानता हूं कि वो लात से मार रही थी। पाद उतार दिया और बात से मारना वो ज्यादा घाव था, लेकिन मैं तो इतना पागल हो गया था कि उस समय कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो जो इस तरह से बात सह करके, उपेक्षा सह करके, तुम मर जाओ मैं नहीं लौटूंगी, यह कह रही थी, फिर भी मैं नग्न उन्मत्त और रोते हुए उसके पीछे जा रहा था। क्या मुझ में ज्ञान है, क्या तेज है और क्या ईश्वत्व है, कुछ भी नहीं। किम विद्या, किम तपसा, किम त्यागे न श्रुते न वा, किम विदिक्ते न मौने न स्त्रीभिर जस मनोहृतम। और अपने ही दृष्टांत से किसी के लिए भी कह रहे हैं, जिस व्यक्ति के चित्त को स्त्रियों ने चुरा लिया, जिस व्यक्ति का चित्त स्त्री में चला गया, स्त्री को अच्छा समझ करके भोग्य बुद्धि जिसकी हो गई, उसके विद्या से क्या लाभ है, कुछ भी नहीं। उसकी तपस्या में क्या दम है, उसके त्याग में क्या दम है, या उसके ज्ञान में, विवेक में, एकांतवास में, मौन से क्या फायदा, क्या लाभ, कुछ भी नहीं। जिसके जस्य मनो स्त्री भी हृतम, हो सकता है कि किसी तपस्वी के या ज्ञानी के नेत्र या श्रवण स्त्री में न जाए, लेकिन मान लीजिए जिसका मन स्त्री में चला गया तो फिर उसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो कुछ भी बेकार मानता हूँ, वो विद्या विद्या है ही नहीं, वो तपस्या, वो त्याग, श्रुत, विवेक, मौन, सब कुछ बेकार। विद्या, विद्या का अर्थ है वेद ज्ञान, वेद का ज्ञान है, अनेक प्रकार के कला में जो कुशल व्यक्ति। यह विद्या शब्द का मुख्य अर्थ है उपासना, और इसको सीधा भक्ति के में भी अनुवाद किया जा सकता है। उस व्यक्ति के भक्ति में क्या दम है जब उसके मन को स्त्री ने खींच लिया। किम तपसा, तप में क्या दम है। कोई व्यक्ति इंद्रिय निग्रह करता है, इंद्रियों को विषय भोगों से हटा लेता है, उपवास करता है और भी नाना प्रकार के तीर्थवास आदि, ठंडा में स्नान, एकादशी उपवास आदि, यदि ये सब कर रहा है फिर भी उसके चित्त को, उसका चित्त स्त्री में चला गया, तो फिर क्या दम है उसकी तपस्या में। किम त्यागे ना, फिर संन्यास में क्या दम है। त्याग का अर्थ है संन्यास, और त्याग किया है, दंड लेकर चल रहा है, लेकिन यदि स्त्रियों ने चित्त खींच लिया तो उसके संन्यास में से कोई फायदा नहीं। श्रुतेन वा, वेद शास्त्र सुना है, प्रवचन सुना है, गुरु के यहाँ पढ़ा है, तो ऐसे ज्ञान से क्या लाभ। विदिक्ते न, कभी विदिक्त स्थान में रह रहा है, विदिक्त कार से जहाँ केवल भजन करने वाले लोग रहते हैं, या एकांत में, घर छोड़कर वृंदावन चला गया है, लेकिन वहां जा करके विवाह कर दिया। विवाह क्या, ऐसे ही किसी स्त्री को लेकर चल दिए, तो फिर उसके विदिक्त वास में क्या, क्या दम है उस ब्रजवास में, तीर्थवास। विदिक्त वास का मतलब होता है कि जन संसर्ग छोड़ करके हम जा रहे हैं, भगवान को पाएंगे, भजन करेंगे, सब करेंगे। विवेक्त में जाए, चाहे हिमालय जाए, चाहे किसी तीर्थ में जाए, एकांत में रहे, फिर भी मन स्त्री में चला गया तो उसके फिर एकांतवास से क्या फायदा। मौने न, मौन साधा, बोलता नहीं है, या संसारिक चर्चा नहीं करता, पर ऐसे व्यक्ति का भी मन है स्त्री में चला गया तो इन सब साधनों से क्या फायदा। सारे साधन व्यर्थ हैं यदि मन स्त्री में चला गया तो। और स्त्री से उपलक्षण अनेक भोगों से भी है, यदि यही मन में रह गया कि अच्छा खाने को मिलता, अच्छा पहनने को मिलता, एसी रूम मिलता, कार मिलती, ये मिलता, तो ये सब त्याग आदि में क्या लाभ है, कुछ भी नहीं। ये सारे साधन व्यर्थ हो जाएंगे। सारे साधनों की सफलता इसमें है कि विषय भोगों से मन को मुक्त करके भगवान पुरुषोत्तम में स्थिर किया जाए, लगाया जाए कृष्ण में। कृष्ण में मनो अभिनिवेश हो गया तो कहीं भी व्यक्ति हो, वास्तव में वो ठीक उपाय कर रहा है। अब अपने को धिक्कार रहे हैं। स्वार्थस्या कोविदं धिंगमां मूर्खं पंडित मानिनं यो हम ईश्वरतां प्राप्य स्त्रीभि गोखर्वज्जितः। स्वार्थस्या कोविदं धिंगमां, मैं अपने वास्तविक परमार्थ के विषय में, स्वार्थ के विषय में अकोविद हूँ। मैं नहीं जानता था कि कृष्ण का भजन ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, तो मैं अपने को बहुत बड़ा सफल व्यक्ति मानता था, विद्वान मानता था कि मैं सम्राट हूँ और संसार की सबसे श्रेष्ठ सुंदरी मुझे मिली हुई है, इसलिए मैं धन्य हूँ। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि अपने स्वार्थ के विषय में, अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य के विषय में मैं प्रथम श्रेणी का मूर्ख हूँ। इतने वर्षों तक उर्वशी के साथ संभोग के बाद महाराज का निर्णय हो रहा है। वे निर्णय दे रहे हैं कि यह जीव का स्वार्थ नहीं है, मैं बिल्कुल धोखा में रहा, मेरा जीवन व्यर्थ बीत गया। धिंगमां, मुझे धिक्कार, वास्तव मेरा जीवन थूकने लायक है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है महाराज पुरुरवा का। हम जिन चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं और महाराज पुरुरवा से कोटि गुना नीचे के धरातल पर उन वस्तुओं को पा करके अपने को धन्य मानते हैं, और वे तो शीर्ष स्थानीय टॉप श्रेणी का भोग पाए थे सब कुछ, लेकिन सबके बाद वे कहते हैं कि धिक्कार है मुझे, मैं कुछ भी जीवन में नहीं पा पाया, मैं कुछ भी नहीं समझ पाया, न मुझ में ज्ञान है, न कुछ विवेक है, कुछ भी नहीं, धिक्कार है मुझे, मूर्खम पंडित मानिनम, वास्तव में मैं मूर्ख हूँ, परंतु दुरभिमति के कारण, दूषित मति के कारण मैं अपने को विद्वान मानता था, पंडित मानता था, मैं जानता था कि मैं समझदार हूँ, यह हूँ वह हूँ, लेकिन एक नंबर का मूर्ख। यो हम ईश्वरतां प्राप्य स्त्री भी गोखरवा जीता, मैं राजाओं का राजा था, और ईश्वरता का अर्थ है मैं वैष्णवता को प्राप्त था, भगवान का भक्त था, और फिर भी मैं इस तरह से जीत लिया गया जैसे गोखर। गो का अर्थ है बैल और खर का अर्थ गधा, जैसे गधा जीत लिया जाता है और जैसे बैल जीत लिया जाता है, उस तरह से मैं जीत लिया गया। स्त्री भी, स्त्रियां किस तरह गधा को और बैल को जीत लेती हैं, एक गाय के पीछे अनेक सांड चलते हैं, कहीं भी भागे वे कष्ट सहते हुए पीछे जाते हैं, गधे के पीछे गधे चलते हैं, तो इस तरह से मैं जीत लिया गया। स्त्री के आकर्षण में मैं कहां नहीं गया और क्या क्या नहीं किया, क्या मेरी दशा नहीं हुई। अच्छा, यह भी बात होती कि चलो सारी लज्जा छोड़ करके, सारा ज्ञान समाप्त करके, यदि मुझे कुछ सुख की अनुभूति हुई होती उर्वशी से, तब भी कुछ ठीक था, लेकिन सेव तो वर्ष पुगन में उर्वश्या अधरा सभम न तृप्यत्म भू कामो बहनी राहुत भीर जथा। मैं अनेक वर्षों तक उर्वशी का अधराशव सेवन किया, अधरा में पिया, लेकिन मेरा काम विषय